अध्याय 25 मानक नॉर्म्स। मानक का अर्थ मीनिंग ऑफ नॉर्म्स मनोवैज्ञानिक परीक्षण तथा शैक्षिक परीक्षण पर जो अंक व्यक्ति या उत्तरदाता को प्राप्त होता है वह मूल अंक कहलाता है, जिसका अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे मान लिया जाए कि राम को एक बुद्धि परीक्षण पर 30 अंक प्राप्त हुए। अब इस 30 अंक का क्या अर्थ है? क्या वह एक तेज बुद्धि का व्यक्ति है या मंद बुद्धि का व्यक्ति है या औसत बुद्धि का व्यक्ति है? इससे किसी प्रकार का कोई अर्थ नहीं निकल सकता है। प्राप्त अंक से कोई सही सही अर्थ ज्ञात करने के लिए यह आवश्यक है कि उस अंक की व्याख्या करने के लिए कोई एक संदर्भ बिंदु रेफरेंस पॉइंट हो। पैराग्राफ चेंज। परीक्षण विशेषज्ञों ने ऐसे दो संदर्भ बिंदुओं की चर्चा की है। एक संदर्भ बिंदु मानक है तथा दूसरा संदर्भ बिंदु एक कसौटी होता है। अब प्रश्न उठता है कि मानक किसे कहते हैं? मानक किसी प्रतिनिधिक प्रतिदर्श का परीक्षण पर एक औसत प्राप्त अंक होता है। फ्रीमैन 1965 के शब्दों में कोट, मानक एक विशिष्ट जीव संख्या द्वारा किसी खास परीक्षण पर प्राप्त अवसर या विशेष अंक होता है। अनकोट। चुकमैन 1975 के अनुसार कोट, किसी बाह्य संदर्भ या मानकीकृत समूह यानी वैसे व्यक्तियों के समूह जिन पर परीक्षण का क्रियान्वयन व्याख्या करने के लिए एक तुलनात्मक आंकड़ा प्रदान करना होता है कि परीक्षण परिणामों पर आधारित प्राप्तांकों के सेट को मानक कहा जाता है। अनकोट। इसका एक उदाहरण इस प्रकार है, जैसे 10 साल के बालकों का एक विशिष्ट समूह द्वारा किसी बुद्धि परीक्षण पर आए औसत अंक को 10 साल के बालकों की बुद्धि का मानक कहा जाएगा। मान लिया जाए कि उस परीक्षण पर उस विशिष्ट समूह का औसत अंक 30 आता है, तो यह 30 उस परीक्षण का मानक होगा। अब इस परीक्षण को क्रियान्वयन करने पर किसी 10 साल के बालक को 50 अंक आता है, तो यह निश्चित रूप से कहा जाएगा कि यह बालक एक तेज बुद्धि का बालक है। उसी ढंग से यदि 10 साल के बालक का बुद्धि प्राप्तांक उसी परीक्षण पर 15 आता है, तो यह निश्चित रूप से कहा जाएगा कि वह बालक एक मंद बुद्धि का बालक है। एक मानक को अधिक निर्भर योग्य एवं विश्वसनीय होने के लिए यह आवश्यक है कि इसका परिकलन और एक प्रतिनिधि प्रतिदर्श द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर होना चाहिए। ऐसा परीक्षण जिसके प्राप्तांकों की व्याख्या करने के लिए मानक तैयार किया जाता है उसे मानक संदर्भित परीक्षण कहा जाता है। स्पष्ट हुआ कि मनोवैज्ञानिक परीक्षणों एवं शैक्षिक परीक्षणों में मानक का स्थान महत्वपूर्ण है। इसके अभाव में परीक्षण पर प्राप्त अंकों की अर्थपूर्ण व्याख्या संभव नहीं है। पैराग्राफ चेंज। मनोवैज्ञानिक परीक्षण पर, खास करके वैसे परीक्षणों पर जो शिक्षक निर्मित परीक्षण होते हैं, प्राप्त अंकों की व्याख्या एक कसौटी के रूप में की जाती है। प्रायः ऐसी कसौटी शिक्षक अपने अनुभव तथा परीक्षण के आधार पर निर्मित करते हैं। ऐसे एक शिक्षक एक टाइपिंग परीक्षण के लिए 40 शब्द प्रति मिनट टाइप करने की कसौटी बनाकर छात्रों की टाइपिंग क्षमता का मूल्यांकन कर सकते हैं। इस कसौटी या इससे ऊपर हो जाने वाले छात्रों को वे सफल छात्र तथा इस कसौटी से नीचे रह जाने वाले छात्रों को वे असफल छात्र कहेंगे। उसी तरह शिक्षक किसी विषय में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक की एक कसौटी रख सकते हैं। जो छात्र 40% या उनसे अधिक अंक ला पाता है उसे वे सफल घोषित करेंगे तथा जो छात्र 40% से कम अंक लाता है उसे असफल घोषित करेंगे। इस तरह से शिक्षक निर्मित परीक्षणों पर आए अंकों की व्याख्या एक बाह्य कसौटी के रूप में की जाती है। इस तरह के परीक्षण को कसौटी संदर्भित परीक्षण कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज। मनोविज्ञान तथा शिक्षा के शोधों में मानक संदर्भित परीक्षण की अधिकता है तथा इसकी मान्यता कसौटी संदर्भित परीक्षण की तुलना में अधिक है। पैराग्राफ चेंज। मानक के प्रकार, टाइप ऑफ नॉर्म्स। लीमैन 1963 ने प्राप्तांकों के स्वरूप के आधार पर मानक के चार प्रकार बतलाए हैं। वे चार प्रकार निम्नांकित हैं: अ, आयु मानक एज नॉर्म्स; ब, ग्रेड मानक ग्रेड नॉर्म्स; स, शततमक मानक परसेंटाइल नॉर्म्स; द, स्तरीय प्राप्तांक मानक स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म्स। इन चार तरह के मानकों का वर्णन निम्नांकित है। आयु मानक एज नॉर्म्स किसी खास उम्र स्तर के चुने गए एक प्रतिनिधि समूह का किसी खास परीक्षण पर आए औसत प्राप्तांक को आयु मानक कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप, यदि बिहार राज्य से 10 साल के 1000 बालकों का प्रतिनिधि समूह का चयन करके उसके भार को मापे तथा फिर उनका औसत ज्ञात करके यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वह 25 किलोग्राम है तो वह आयु मानक का उदाहरण होगा। मानक बन जाने के बाद किसी बालक का भार की तुलना उससे करके यह आसानी से ज्ञात किया जा सकता है कि उस बालक का शारीरिक वजन कम या ज़्यादा है। प्रत्येक उम्र के व्यक्तियों के लिए अलग अलग मानक इसी ढंग से तैयार किया जा सकता है। आयु मानक सामान्यतः उन्हीं शील गुणों या क्षमताओं के लिए अधिक उपयोगी होता है जो उम्र के साथ क्रमबद्ध रूप से बढ़ते पाए जाते हैं। व्यक्ति के शारीरिक गुण के साथ साथ एक सीमा तक बढ़ाते हैं, अतः इन शील गुणों की व्याख्या मापन के ख्याल से करने के लिए आयु मानक काफ़ी उपयुक्त माना गया है। रचेंज, आयु मानक की सरलता ही इसका प्रमुख लाभ है। फिर भी इस तरह के मानक की कुछ परिसीमाएं हैं जो निम्नांकित हैं। एक, आयु मानक में एक प्रमाणिक एवं समरूप इकाई की कमी पाई जाती है, इसके कारण आयु मानक की सत्यता कम हो जाती है। इसे एक उदाहरण द्वारा इस प्रकार समझाया जा सकता है। मान लिया जाए कि कोई शोधकर्ता किसी बुद्धि परीक्षण का आयु मानक तैयार कर रहा है। अब यहाँ बुद्धि एक ऐसा मानसिक गुण है जिसमें आयु वृद्धि होने के साथ साथ विकास की दर समान नहीं होती है। 5 से 7 साल में बुद्धि की वृद्धि का विकास की दर सामान्यतः 14 से 16 साल में हुए बुद्धि के वृद्धि के विकास के दर से अधिक होगा। इतना ही नहीं, यह भी देखा गया है कि एक ही उम्र सीमा पर सभी बालकों की बुद्धि का विकास एक समान नहीं होता है। एक ही उम्र के कुछ बालकों में बुद्धि का विकास तेजी से होता है तथा कुछ बालकों में बुद्धि का विकास मंद गति से होता है। इन सभी तरह की असमानताओं का प्रभाव यह होता है कि आयु मानक की साथ सत्यता एवं निर्भरता काफ़ी कम हो जाती है। पैराग्राफ चेंज 2, आयु मानक में दूसरी समस्या इसलिए उठ खड़ी होती है कि कुछ शील गुणों का विकास दर तुल्य नहीं होता है, जैसे भूल भुलैया सीखना एक ऐसी क्षमता है जिसमें किशोरावस्था के बाद सामान्यतः प्रगति नहीं होती है, परंतु शब्दावली निर्माण की क्षमता एक ऐसी क्षमता है जो किशोरावस्था के बाद भी बढ़ती रहती है। ऐसी परिस्थिति में इन दोनों तरह की क्षमताओं या ऐसी ही शील गुणों के आयु मानकों का सीधा तुलना संभव नहीं हो पाता है। 3, व्यक्तित्व के कुछ शील गुण ऐसे हैं जिसके लिए आयु मानक तैयार किया जाना संभव नहीं है, क्योंकि उम्र बीतने के साथ साथ ऐसे शील गुणों में एक क्रमबद्ध परिवर्तन नहीं होता है। दृष्टि तीक्ष्णता एक ऐसा ही शील गुण का उदाहरण है। 2, ग्रेड मानक। ग्रेड मानक उन शील गुणों के लिए विकसित किया जाता है जिसमें स्कूल के एक वर्ग या ग्रेड से अन्य दूसरे वर्ग या ग्रेड तक एक क्रमबद्ध वृद्धि होती है। इस अर्थ में किसी भी ग्रेड या वर्ग के व्यक्तियों के सदस्यों का एक प्रतिनिधिक समूह का औसत प्राप्तांक को उस वर्ग का ग्रेड मानक कहा जाता है। ग्रेड मानक तैयार करने के लिए प्रत्येक वर्ग से एक प्रतिनिधिक प्रतिदर्श तैयार कर लिया जाता है। इसके बाद उन पर परीक्षण क्रियान्वयन किया जाता है। पुनः प्रत्येक वर्ग के लिए प्रतिदर्श से प्राप्तांकों के आधार पर औसत ज्ञात किया जाता है। वही औसत प्राप्तांक प्रत्येक वर्ग का ग्रेड मानक कहलाता है। एक ग्रेड के दूसरे ग्रेड के औसत प्राप्तांकों के बीच के प्राप्तांकों के लिए अंकगणितीय अंतर्गणन के आधार पर ग्रेड मानक तैयार किया जाता है। एक उदाहरण, मान लिया जाए कि कोई शोधकर्ता वर्ग 1 से वर्ग 4 तक के छात्रों का हिज्य परीक्षण तैयार किया है जिसका वह ग्रेड मानक तैयार करना चाहता है। प्रत्येक कक्षा से वह 200 छात्रों का एक प्रतिनिधिक प्रतिदर्शन विभिन्न स्कूलों से चयन करता है। इस तरह से चुने गए प्रतिदर्शों पर वह हिज्जे परीक्षण क्रियान्वयन करेगा। प्रत्येक कक्षा के लिए वह प्रतिदर्श द्वारा प्राप्त अंकों का एक औसत अलग अलग ज्ञात करेगा। ये औसत ग्रेड मानक का उदाहरण होगा। एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड के औसत प्राप्त अंकों के बीच के लिए फिर अलग से अंक गणितीय अंतर्गणन के आधार पर ग्रेड मानक तैयार किया जाता है। ग्रेड मानक की उपयोगिता उपलब्धि परीक्षण के लिए काफ़ी अधिक है। परीक्षण विशेषज्ञों का आम मत है कि ग्रेड मानक एक सरल एवं सुगम मानक है जिसके आधार पर स्कूल की विभिन्न कक्षाओं या वर्गों के छात्रों के निष्पादनों की वैज्ञानिक व्याख्या की जाती है। फिर भी इस तरह के ग्रेड मानक की कुछ परिसीमाएं हैं जो निम्नांकित हैं। एक ही छात्र का विभिन्न विषयों में ग्रेड मानक की तुलना संभव नहीं है। जैसे समाज अध्ययन में किसी छात्र का ग्रेड मानक की तुलना उसी छात्र के अंकगणितीय के ग्रेड मानक से अर्थपूर्ण ढंग से नहीं की जा सकती है, क्योंकि अंकगणित का ज्ञान मूलतः कक्षा में दिए गए परीक्षणों पर आधारित होता है, जबकि समाज अध्ययन का ज्ञान कक्षा के परीक्षण तथा कक्षा के बाहर की अनुभूतियों एवं अंतःक्रियाओं दोनों पर आधारित होता है। दो, ग्रेड मानक में यह पूर्व कल्पना कर लिया जाता है कि एक कक्षा या वर्ग के सभी छात्रों को पाठ्यक्रम संबंधी अनुभूतियां करीब करीब एक समान हैं। इस प्रकार की पूर्व कल्पना assumptions प्रारंभिक वर्गों के लिए सही हो सकती है, परंतु स्कूल के ऊंचे वर्गों के लिए प्रायः सही नहीं होती है। तीन, ग्रेड मानक उन शील गुणों या क्षमताओं के लिए भी अधिक उपयोगी नहीं होता है जिनमें प्रारंभिक कक्षा में तो तेजी से विकास होता है परंतु बाद की कक्षाओं में विकास धीमा पड़ जाता है, जैसे हिज्जे करने करने की क्षमता एवं अंक गणितीय क्षमता में तो प्रारंभिक वर्गों में तेजी से वृद्धि होती है, परंतु ऊपर की कक्षाओं में उन क्षमताओं में वृद्धि की गति मंद पड़ जाती है। इस तरह की क्षमता के लिए भी ग्रेड मानक को अधिक उपयुक्त नहीं समझा जाता है। तीन, शततमक मानक या शततमक कोटि मानक। शततमक मानक या जिसे शततमक कोटि मानक भी कहा जाता है एक ऐसा मानक है जिसकी अभिव्यक्ति शततमक कोटि में की जाती है। शततमक मानक एक ऐसा मानक है जो यह बतलाता है कि कितने प्रतिशत केसेस दिए हुए प्राप्तांक से नीचे हैं। जैसे अगर समायोजन आविष्कारिका पर किसी व्यक्ति को 50 प्राप्तांक आता है और अगर माननीय कृत प्रतिदर्श में 70% लोगों को 50 से कम अंक आया है तो उसका शततमक मानक में PR 70 होगा। इस तरह से शततमक मानक किसी परीक्षण पर व्यक्ति द्वारा प्राप्त अंक की व्याख्या माननीय कृत प्रतिदर्श में प्राप्त स्थान के रूप में करता है। शततमक मानक को सचमुच में अर्थपूर्ण होने के लिए यह आवश्यक है कि माननीय कृत प्रतिदर्श उम्र वर्ग पेशा ग्रामीण शहरी चरों आदि के ख्याल में समझाती हो। पैराग्राफ चेंज, शततमक मानक का प्रमुख लाभ यह है कि ऐसे मानक का निर्माण करना काफ़ी आसान होता है तथा उसे समझने में भी कोई विशेष कठिनाई नहीं होती है। फलतः इसके आधार पर प्राप्तांकों की व्याख्या सरल ढंग से कर ली जाती है। इतना ही नहीं, शततमक मानक किसी भी तरह के परीक्षण के लिए उपयुक्त होता है। इन सभी लाभों के बावजूद शततमक मानक की कुछ परिसीमाएं हैं जो निम्नांकित हैं। एक, शततमक तथा प्रतिशत में समानता होने से लोगों के मन में प्रायः संभ्रांति पैदा हो जाती है जिससे लोग शततमक मानक के कभी कभी सही अर्थ निकालने में अपने को समर्थ असमर्थ पाते हैं। दो, शततमक मानक की सबसे प्रमुख परिसीमा पूरे मापनी में असमान इकाइयों का होना है। शततमक मानक में यह देखा गया है कि शततमक मापनी के बीच PR 40 से 60 पर के मूल्य प्राप्तांकों में होने वाले थोड़े अंतर से भी शततमक कोटि में कई बिंदुओं तक का अंतर हो जाता है, परंतु शततमक मापनी के छोर पर के मूल प्राप्तांकों में होने वाले अधिक अंतर से भी शततमक मापनी के छोर PR 90 तथा PR 10 पर के मूल प्राप्तांकों में होने वाली अधिक अंतर से भी शततमक कोटि में एक दो बिंदुओं का ही अंतर पड़ता है। अस्पष्टता शततमक मानक में इस तरह से असमान इकाई से प्राप्तांकों की वास्तविक व्याख्या में अंतर हो जाता है, जिसे अच्छा नहीं समझा जाता है। पैराग्राफ चेंज 3, शततमक मानक द्वारा मानकीकृत प्रतिदर्श में व्यक्ति का सापेक्ष स्थान का पता तो चल जाता है, परंतु इससे प्राप्तांकों के बीच वास्तविक अंतर की मात्रा के बारे में कोई अता पता नहीं हो पाता है। 4, प्रामाणिक प्राप्तांक मानक स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म। प्रामाणिक प्राप्तांक मानक वैसे मानक को कहा जाता है जो प्रामाणिक प्राप्तांक पर आधारित होते हैं। प्रामाणिक प्राप्तांक मानक को शततमक मानक से इसलिए श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि इसमें मापने की इकाई पूर्ण रूपेण समान होती है, जिससे उसकी सभी इकाइयों का अर्थ एक समान होता है। प्रामाणिक प्राप्तांक मानक के अर्थ को समझने के लिए यह आवश्यक है कि प्रामाणिक प्राप्तांक का अर्थ समझ लिया जाए। प्रामाणिक प्राप्तांक एक तरह का व्युत्पन्न प्राप्त अंक डिराइव्ड स्कोर है, जिसका एक निश्चित माध्य फिक्स्ड मीन एवं निश्चित मानक विचलन फिक्स्ड स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। जेड प्राप्तांक, टी प्राप्तांक, सी प्राप्तांक, हल प्राप्तांक, स्टेनाइन प्राप्तांक आदि प्रामाणिक प्राप्तांक के कुछ उदाहरण हैं। प्रामाणिक प्राप्तांकों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? परीक्षण विशेषज्ञों ने इसके दो कारण बतलाए हैं। पहला तो यह कि जब किसी व्यक्ति का विभिन्न परीक्षणों पर के निष्पादनों की तुलना आपस में करनी होती है तो उन प्राप्तांकों को प्रामाणिक प्राप्तांक में बदल लिया जाता है और फिर आसानी से उसकी तुलना कर ली जाती है। दूसरा कारण यह है कि प्रामाणिक प्राप्तांकों में मापन की इकाई बराबर होती है और इसका आकार एक वितरण से दूसरे वितरण में परिवर्तित नहीं होता है। इन कारणों से प्रामाणिक प्राप्तांकों का प्रयोग मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक परीक्षणों में अधिक होता है। पैराग्राफ चेंज। अब प्रश्न यह उठता है कि मूल प्राप्तांकों को प्रामाणिक प्राप्तांकों में कैसे परिवर्तित किया जाता है। इस तरह का परिवर्तन दो प्रविधियों द्वारा किया जाता है। पैराग्राफ चेंज 1, रेखीय रूपांतरण। 2, सामान्यित रूपांतरण, नॉर्मलाइज ट्रांसफॉर्मेशन। रेखीय रूपांतरण वैसे रूपांतरण को कहा जाता है जिसमें मूल प्राप्तांकों के सभी गुण या विशेषताएं रूपांतरित प्राप्तांकों के वितरण में बिना किसी तरह के परिवर्तन के ही पाए जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि वे सभी सांख्यिकीय परिकलन जो मूल प्राप्तांकों के साथ किए जाते थे रूपांतरित प्राप्तांकों के साथ भी किए जाते हैं। रेखीय रूपांतरण का एक उदाहरण जेड प्राप्तांक है, जिसे ज्ञात करने का सूत्र इस प्रकार है, z=x-m/sd, सूत्र 19। यहाँ x=मूल प्राप्तांक, m=माध्य, sd=मानक विचलन। z प्राप्तांक का माध्य शून्य होता है तथा मानक विचलन एक ऐसा विचलन एक होता है। ये दोनों मान हमेशा निश्चित होते हैं। उदाहरण के लिए मान लिया जाए कि मोहन ने किसी भी परीक्षण पर 20 प्राप्तांक प्राप्त किया और इस परीक्षण पर के प्राप्तांकों के वितरण का माध्य 10 है तथा मानक विचलन 5 है, तो सूत्र 19 के अनुसार इसका z प्राप्तांक इस प्रकार ज्ञात होगा, z=20-10/5=10/5=2। इसका अर्थ यह हुआ कि सोहन का प्राप्तांक 2σ या मानक विचलन इकाई माध्य से ऊपर है। रेखीय रूपांतरित प्राप्तांकों का एक सामान्य अवगुण यह है कि उनकी तुलना आपस में तभी संभव है जब उन्हें ऐसे वितरण से लिया गया है जिसका आकार एक समान है। यदि एक वितरण का आकार वैषम्य है तथा दूसरे वितरण का आकार प्रसामान्य है तो ऐसी परिस्थिति में हम रेखीय रूपांतरित प्राप्तांकों की आपस में तुलना नहीं कर सकते हैं। पैराग्राफ चेंज। इस तरह की विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रसामान्यित प्रामाणिक प्राप्तांकों का सहारा लिया जाता है। प्रसामान्यित प्रामाणिक प्राप्तांक वैसे प्राप्तांक को कहा जाता है जिसे प्रसामान्य वितरण के रूप में बदल दिया जाता है तथा इसका एक पूर्व निश्चित माध्य तथा मानक विचलन होता है। टी प्राप्तांक एक प्रमुख प्रसामान्यित प्रामाणिक प्राप्तांक है जिसका प्रतिपादन मैकाल द्वारा किया गया तथा थॉर्नडाइक के नाम के प्रथम अक्षर पर इसका नामकरण किया गया। टी प्राप्तांक एक ऐसा प्रसामयिक प्रामाणिक प्राप्तांक है जिसका आकार प्रसामान्य वक्र पर आधारित होता है तथा जिसका माध्य 50 होता है एवं मानक विचलन 10 होता है। इसका सूत्र इस प्रकार है, टी इज इक्वल टू जेड 10 प्लस 50, यहाँ टी इज इक्वल टू टी प्राप्तांक, जेड इज इक्वल टू जेड प्राप्तांक। इस तरह से अन्य सामान्यित प्रामाणिक प्राप्तांक के उदाहरण हैं एस्टेनाइन, विचलित बुद्धि लब्धि, इन सब का प्रयोग मानक बनाने में काफ़ी किया जाता है। आजकल अधिकतर बुद्धि परीक्षणों का मानक यही विचलित बुद्धि लब्धि के रूप में ज्ञात किया जाता है। मानक विकसित करने में निहित कदम स्टेप्स इन्वॉल्व इन डेवलपिंग नॉर्म्स, किसी भी परीक्षण के मानक को विकसित करना निश्चित रूप से एक कठिन कार्य है, परंतु यदि निर्माणकर्ता कुछ खास खास निश्चित कदमों का अनुसरण करे तो वह आसानी से इन कठिनाइयों को दूर कर सकता है। ऐसे कदमों में निम्नांकित प्रमुख हैं, क लक्ष्य जीव संख्या को परिभाषित करता है, ख लक्ष्य जीव संख्या से प्रतिदर्श को चयनित करता है, ग परीक्षण अवस्थाओं को मान्यकृत करना। इन प्रमुख कदमों का वर्णन निम्नांकित है, क लक्ष्य जीव संख्या को परिभाषित करना, किसी परीक्षण के मानक को विकसित करने में सबसे पहला कदम लक्ष्य जीव संख्या की संरचना को परिभाषित करना है। लक्ष्य जीव संख्या से तात्पर्य वैसे जीव संख्या से होता है जिसके सदस्यों के लिए परीक्षण का निर्माण किया जा रहा है। उदाहरण स्वरूप मान लिया जाए कि एक परीक्षण निर्माणकर्ता विदेशी भाषा के रूप में प्रयुक्त अंग्रेजी के परीक्षण बना रहा है। स्पष्टतः इस परीक्षण के लिए लक्ष्य जीव संख्या वैसे छात्रों का एक समूह होगा जिसकी मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है, परंतु वे वैसे प्रदेश में अध्ययन करने की बात सोच रहे हैं जहां शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी है। ऐसे छात्र इस परीक्षण के लिए एक उपयुक्त जीव संख्या का उदाहरण होगा, परंतु PhD करने वाले छात्र उस परीक्षण के लिए एक अनुपयुक्त जीव संख्या का उदाहरण होंगे। ख लक्ष्य जीव संख्या से प्रतिदर्श को चयनित करना, जब परीक्षण निर्माणकर्ता लक्ष्य जीव संख्या को परिभाषित कर चुका होता है तो वह उससे एक प्रतिनिधि प्रतिदर्श का चयन करता है। चुना गया प्रतिदर्श जीव संख्या का सही से प्रतिनिधित्व कर सके इसके लिए यह आवश्यक है कि उस प्रतिदर्श से जीव संख्या के सभी अस्त्रों से लोगों को चुना जाए। प्रतिदर्श जीव संख्या का सही प्रतिनिधित्व कर सके इसके लिए परीक्षण निर्माणकर्ता प्रतिदर्श के कुछ ऐसी विधियों के अपनाता है जिसके सहारे यादृच्छिक ढंग से व्यक्तियों का चयन किया जाना संभव हो सके। इसके लिए साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन तथा क्षेत्र या कुछ प्रतिदर्शन का प्रयोग प्रायः किया जाता है। परीक्षण अवस्थाओं को मान्यकृत करना, किसी मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षिक परीक्षण के मानक को विकसित करने में तीसरा कदम उन अवस्थाओं को मान्यकृत करना होता है जिसमें परीक्षण का क्रियान्वयन करके मानक विकसित किया जाता है। ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक है कि वह कमरा या परिस्थिति जिसमें परीक्षण का क्रियान्वयन होना है ध्वनि नियंत्रित हो, उसमें उत्तम रोशनी एवं वायु संचार का प्रावधान हो, तापक्रम नियंत्रित हो तथा परीक्षार्थियों को बैठने की पर्याप्त जगह हो। इन सब के अलावा यह भी आवश्यक है कि परीक्षण का क्रियान्वयन एक खास निर्देश इंस्ट्रक्शन से हो। परीक्षण के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सभी परीक्षार्थियों को समान समय दिया जाए तथा परीक्षण सामग्रियों की पर्याप्त सुरक्षा बनी हो। इस मानकीकरण के अभाव में परीक्षण का मानक सही ढंग से एवं वैज्ञानिक रूप से नहीं विकसित किया जा सकता है।